मेरे नौजवान साथियों नमस्कार। फ्रेंड्स, मुख्य विषय के अंतर्गत तो हम लोग कल वाले ही विषय को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले जो दो खबरें हैं उन पर थोड़ी सी निगाह डाल लेते हैं। और ये दोनों खबरें अखबारों के एडिटोरियल कमेंट्स से जुड़ी हुई हैं, और इसमें से जो एक खबर है वह तो खासकर अभी जो राजनीतिक क्षेत्र में काफ़ी तेजी से दिखाई दे रही है उसको लेकर लिखा गया एडिटोरियल है। दैनिक भास्कर ने आज एक एडिटोरियल लिखा है और खासकर दल बदल के ऊपर लिखा है। आप देख रहे हैं कि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और उसमें अब दल बदल का दौर शुरू हो गया, और खासकर उत्तर प्रदेश में आपको यह दिखाई दे रहा है दल बदल। देखिए, यह कोई अलग से घटना नहीं है, कोई अलग से न्यूज नहीं है, लेकिन घटित हो रही है। आपको क्या लगता है कि अगर हम संवैधानिक दृष्टि से देखें या भारत के लोकतांत्रिक चरित्र की दृष्टि से देखें तो इस दल बदल की घटना को आप किस रूप में लेते हैं? अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं ये तो बहुत ही गंभीर मामला है, तो निश्चित तौर पर यह मान करके चलिए कि यह जो टॉपिक है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि दल बदल की जो घटना घटित हो रही है वो केवल अभी ही हो रही है। हर साल आपको थोड़ी बहुत इस तरह की घटनाएं सुनने को मिल जाती हैं, पढ़ने को मिल जाती हैं, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव है और आप देखिए कि काफी ज्यादा होने लगी है, बीजेपी से निकल के समाजवादी पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी से निकल के उधर इधर खूब सारे हेर फेर हो रहे हैं। देखिए, भले ही यह क्वेश्चन आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में न आए, लेकिन यह एक ऐसा टॉपिक है जिसकी जानकारी आपको एम्पावर्ड करेगी, बहुत ही आपको सशक्त बनाएगी। तो अच्छे तरीके से इस विषय की जानकारी होनी चाहिए, और खासकर इसको लेकर के जो एक्ट बना हुआ है, जो कानून बना हुआ है, उसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, और खासकर इस दृष्टि से पढ़ने की कोशिश कीजिए उसे। मैं डायरेक्शन आपको बता रहा हूं कि दल बदल कानून बन गया, उसे आगे चल करके और सुधारा गया, इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि जो दल बदल की घटनाएं हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। तो फिर क्या किया जाए, इसे कैसे रोका जाए, क्या रोका जाना चाहिए? क्योंकि जब हम इसे बिल्कुल रोक देते हैं, मान लीजिए आपने एकदम इसे रोक दिया कि अगर जो दल बदल करेगा उसे फिर आगे चुनाव लड़ने का अधिकार ही नहीं होगा, मान लीजिए कि आपने ये कानून बना दिया, तो क्या आपको नहीं लगता कि पार्टी के अंदर ही एक अलग किस्म का अधिनायकवाद उभर आएगा? मान लीजिए कि मैं किसी एक पार्टी का सदस्य हूं, उसका विधायक हूं, सांसद हूं, और मैं अपनी पार्टी की किसी नीति से सहमत नहीं हूं। अब मैं क्या करूं? क्योंकि अगर मैं पार्टी में रहता हूं तो मुझे उसके प्रति सहमति रखनी पड़ेगी, और दल बदल कर मैं दूसरी पार्टी में जा नहीं सकता है, इसका मतलब है मैं रिजाइन करूं, अपना पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर दूं। तो फिर यहां सवाल उठता है कि एक ऐसे देश में जो लोकतांत्रिक देश है, क्या वहां के जो राजनीतिक दल हैं उनमें आंतरिक लोकतंत्र नहीं होना चाहिए? और जब आप इस तरह का कानून बना देंगे तो आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। मैं जानबूझकर आपसे इस तरीके से बात कर रहा हूं, क्योंकि इससे पहले यदि मैं आपसे यह कहता रहा हूं कि आपको किसी भी टॉपिक पर थोड़ी देर के लिए विचार करना चाहिए, और खासकर इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जितने भी आपको प्रेस क्लिपिंग्स दी जाती हैं सब पर आप विचार कीजिए, या जितने भी घटनाओं खबरों की मैं चर्चा करता हूं उन सब पर विचार कीजिए, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि जब मैं बात कर रहा होता हूं तो मैं कहता हूं कि यह बहुत इंपॉर्टेंट है और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिन्हें मैं इंपॉर्टेंट कहता हूं उन पर आपको विचार करना चाहिए, और अभी जो मैंने आपको बताया है वो विचार करने का एक तरीका बताया है कि कैसे किसी टॉपिक पर आप विचार करेंगे। अगर आप अपने पढ़े हुए को केवल दोहरा लेते हैं, या तो आप देखकर दोहराते हैं या मन ही मन दोहराते हैं, तो रिवाइज तो करना ही चाहिए क्योंकि तभी हमारे दिमाग में फैक्ट्स ताजे रहते हैं, लेकिन इस तरीके से आपको प्रश्न खड़े करने चाहिए कि अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ऐसा करेंगे तो क्या होगा, तब जाकर के फिर आपके दिमाग में वो क्षमता पैदा होगी कि वो प्रश्नों के उत्तर ढूंढ सकेगी। दोस्तों, जो दूसरा एडिटोरियल है वो दैनिक जागरण का है, और जिसमें प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के बारे में बात की गई है। इससे पहले, काफी पहले, सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई थी, बाद में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने पर 2014 में फिर ये प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई, और इसके तहत जो एक टारगेट रखा गया है वो बहुत अच्छा टारगेट है, और यह है कि 2025 तक देश भर के जितने भी अनुसूचित जाति बहुल गांव हैं उनको आदर्श ग्राम बना दिया जाएगा 2025 तक। तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, चार साल का ही वक्त, 22, 23, 24, 25। और एक बहुत बड़ी बात है, इसमें एक आंकड़ा भी दिया हुआ है, 27,000 ऐसे गांव हैं अनुसूचित जाति बहुल गांव हैं। ये आंकड़ा आपके दिमाग में रहना चाहिए कि बाई दी वे अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप इस आंकड़े को मेंशन कर सके। देखिए, ग्राम विकास से जुड़ा हुआ विषय है, फिर अनुसूचित जाति बहुल ग्राम विकास से जुड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली यह टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सामान्य बात नहीं है। और जब हम ग्राम में विकास की बात करते हैं तो वहां किस किस तरह का विकास किया जाना चाहिए इसके बारे में आप अनुमान लगा सकते हैं। एक बार जब आप इस एडिटोरियल को पढ़ लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि अच्छा किन किन बिंदुओं पर आपको जोर देना है, क्योंकि देखिए सड़कें हों और अस्पताल हों और आपके शिक्षण संस्थाएं हों, पाठशाला हों, ये तो एक बात है, लेकिन आप जिस युग में अब रह रहे हैं वहां आपको थोड़ी दूसरे तरीके से भी सोचना पड़ेगा। चलिए ये सब तो हैं, लेकिन क्या वहां इंटरनेट की सुविधाएं नहीं होनी चाहिए, ये आपके राइटिंग में आनी चाहिए। क्या वहां बैंक की फैसिलिटी नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। अगर आप इन दोनों को छोड़ देंगे, देखिए मैं उन बातों को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं या आपके दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा हूं जो आपके आंसर को अपडेट करते हैं। जब हम गांव के विकास के बारे में सोचते हैं तो यही कि भाई सड़कें ठीक नहीं हैं, वहां अस्पताल नहीं है और वहां स्कूल ठीक नहीं है, दूसरी फैसिलिटीज नहीं है, यही बातें हमारे दिमाग में आती हैं। लेकिन अब जहां हम पहुंच चुके हैं वहां बहुत जरूरी है कि बैंकिंग फैसिलिटी हो, जहां प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते की बात हो रही है वहां बैंकिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। समावेशी विकास यही तो है, आर्थिक समावेशी। और फिर इंटरनेट, आप देख रहे हैं कि किस तरह से पूरे के पूरे कोरोना दौर में जो शिक्षा प्रणाली है वही पूरी तरह से ऑनलाइन हो गई है। अगर आप वहां इंटरनेट नहीं देंगे तो फिर हमारे अनुसूचित बहुल क्षेत्र के जो स्टूडेंट्स हैं वो पीछे हो जाएंगे, फिर असमानता आ जाएगी। तो ये दोनों छूटने नहीं चाहिए। तो जब आप पढ़ें तो इन बातों के प्रति आपको सतर्क रहना होगा। तो दोस्तों, अब मैं थोड़ी सी इस तरह के तरीके पर भी बात करके आपका ध्यान उन बिंदुओं पर आकर्षित करना चाहूंगा जो बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर जानकारी न होने के कारण हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं, उनकी उपेक्षा कर बैठते हैं। तो इन दो बिंदुओं पर मुझे आप सबसे बात करनी थी। अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर। फ्रेंड्स, आप लोगों से कल बहुत मेल मिले हैं, अभी तक जितने भी मेल आते थे उनसे लगभग 1.5 गुना अधिक मेल, और मुझे खुशी है कि कुछ और स्टूडेंट्स के हाथों ने हरकत में आना शुरू कर दिया है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जनरली आप लोगों ने सुना होगा कि जब मैं ईमेल लिखने वाले मित्रों के नाम लेता हूं ना, तो कुछ नाम तो आपको रट गए होंगे, याद हो गए होंगे, यानी कि सर बार बार इन्हीं का नाम क्यों लेते हैं, अब भैया वही लोग लिखते हैं तो मैं क्या करूं, या फिर बहुत लोग लिखते हैं लेकिन वही लोग थोड़ा सा ठीक लिखते हैं तो मैं उनके नाम लेता हूं। अब उनको मैं निराश तो नहीं कर सकता क्योंकि वो इस लायक हैं, तो आप भी उसमें शामिल हो जाइए, मैं आमंत्रित करता हूं, क्योंकि लिखने की आदत तो देखिए आप सबकी छूट ही चुकी है। आप किसको पत्र लिखते हैं आप बताइए? आप अगर मैं नोट्स बनाने को छोड़ दूं और एग्जामिनेशन हॉल में आंसर राइटिंग को छोड़ दूं तो आप बताइए कि आप कब लिखते हैं? आप शहर में पढ़ने गए हुए हैं, आप अपने पेरेंट्स को लेटर लिखते हैं? नहीं लिखते, कुछ नहीं लिखते। किसको लेटर? दोस्तों को लिखते हैं? नहीं लिखते। व्हाट्सएप है, मैसेज कर देंगे, बात बन जाएगी, नहीं तो फोन करके हालचाल पूछ लेंगे, लिखने की क्या जरूरत है। तो आपको जो मैं कहता हूं कि आप लिखें, अभिव्यक्त करें, तो एक मौका है जबकि आपके हाथ हरकत में आएंगे, आपका दिमाग काम करना शुरू करेगा कि कैसे लिखा जाना चाहिए, लिखने में क्या क्या बातें होनी चाहिए। दिमाग तभी दोस्तों एक्टिव होगा। तो आप इसे केवल रिएक्शन मत मानिए कि आप अपना फीडबैक दे रहे हैं, अपने अभ्यास के रूप में भी लीजिए, एक ऐसे अभ्यास के रूप में जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है। एक बात जो आप सबके मेल में मुझे बहुत साफ तौर पर दिखाई दी और मैं मुझे मालूम था कि यही बात दिखाई भी देगी, वो ये कि सर ऐसा लग रहा था कि हम इस पर लिख लेंगे, प्रश्न तो समझ में आ गया लेकिन जब उत्तर लिखने बैठे तो नहीं लिख पाए। गड़बड़ा गए। कहां से शुरू करें, क्या क्या डालें? और निबंध के बारे में तो यही प्रतिक्रिया मिली है कि एकाद दो पैरा तक तो लिखा गया और इसके बाद फिर लिखना मुश्किल हो गया, और जब लिखे हुए को देखा, पढ़ने की कोशिश की, तो पता लगा कि अब तो बातें दोहराई जा रही हैं। मुझे लगता है कि आप सब में से उन स्टूडेंट्स ने जिन्होंने मेरी बात को मानते हुए अपना यह प्रयोग किया कि मैं लिख करके देखता हूं, वे अपनी एक बहुत बड़ी भयावह कमजोरी से परिचित हो चुके हैं, और यह बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, आप इस बात को कतई न भूलें, मैं रिपीट कर रहा हूं कि आप परीक्षा नहीं दे रहे हैं, आप प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, आप एक मैच खेल रहे हैं कि सामने वाला अगर आपसे बेहतर हुआ तो वो जीत जाएगा, आप रह जाएंगे। तो आपको अपना बेस्ट करना है, और बेस्ट करने का आधार यही होता है कि जिनमें हम अच्छे हैं उस अच्छाई को बनाए रखें, अपनी ताकत को इंटैक्ट रखें, और साथ ही साथ जो मेरी कमजोरियां हैं मैं अपनी उन कमजोरियों पर काम करूं और उन कमजोरियों को दूर करूं। अगर मेरी वो कमजोरियां बनी रहेंगी तो मान करके चलिए कि मैं ग्राउंड से आउट हो जाऊंगा, मुझे कोई संभालने वाला नहीं होगा, और मैं अपनी कमजोरियों को कैसे जानूंगा? जब तक मैं इस तरीके से परीक्षण नहीं करूंगा, इस तरह के प्रयोग नहीं करूंगा, अपने को टेस्ट नहीं करूंगा, तब तक मैं कैसे जानूंगा कि मेरी कौन कौन सी कमजोरियां हैं? तो मुझे खुशी है कि आप लोगों ने अपनी उन सबसे बड़ी कमजोरी को जान लिया है जो आपके लिए आगे चल करके सबसे बड़ी बाधा बनने वाली थी। मैं ऐसे स्टूडेंट को जानता हूं जो प्री में 75% स्कोर किया, जिसने 5 बार 75% स्कोर किया, लेकिन एक बार भी मेंस स्कोर नहीं कर पाया, यानी कि मेंस में सक्सेस नहीं हो पाया, क्वालिफाई नहीं कर पाया। 75% प्री में लाने वाला स्टूडेंट मेंस में 28% 30% स्कोर करता है। सोच करके देखिए, ये सच्चाई है, ये काल्पनिक आंकड़ा नहीं है। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। हम लोग की जो ऑफलाइन क्लासेज हैं 27 मार्च से 10 अप्रैल के बीच होने वाली हैं। इसके लिए 3 साथियों ने अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं राधा गुप्ता पुणे महाराष्ट्र से, राहुल कुमार आपका गाँव है छटीसा जिला गया बिहार से, और सौरभ कुमार यादव गाजीपुर उत्तर प्रदेश से। तो राधा, राहुल और सौरभ, आप तीनों का स्वागत है। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं दीक्षा धाकड़ रायसेन मध्य प्रदेश से, सुधांशु मिश्रा महुआ बिहार से, नीतीश कुमार बेगूसराय बिहार से, सौम्य रंजन मिश्रा पारादीप ओडिशा से, अविनाश सिंह चौहान नबीनगर बिहार से, और सतीश जायसवाल सिंगरौली मध्य प्रदेश से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।